ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि इस योजना से देश के 1,70,00,000 किसानों को मदद मिलेगी।
100 ऐसे जिले जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो, ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें, ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा की सराहना का प्रस्ताव पारित किया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कल अपनी अंतरिक्ष यात्रा से सुरक्षित पृथ्वी पर वापस आ गए, जो भारत की अनंत आकांक्षाओं का प्रतीक है। संसद का मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आह्वान करेगी। मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। भारत ने अपने नागरिकों से ईरान की अनावश्यक यात्रा से बचने को कहा है। ईरान में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच ये परामर्श जारी किया गया है। वर्तमान में ईरान में रह रहे और स्वदेश लौटने के इच्छुक भारतीय नागरिकों को वाणिज्यिक उड़ान और अन्य विकल्पों की मदद लेने का परामर्श दिया गया है। वैश्विक आतंकवाद वित्त पोषण निगरानी संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FTF ने तेजी से डिजिटल हो रही दुनिया में धन के दुरुपयोग से जुड़े संभावित खतरों को उजागर किया है। FATF ने कहा है कि धन का दुरुपयोग आतंकवाद को समर्थन देने, अवैध कमाई छिपाने या वैश्विक शांति को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
FATF ने कहा कि इन रिपोर्टों में उन्नत तरीकों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है, जिनमें प्रतिबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की पहचान छिपाने के लिए लाभकारी स्वामित्व की जानकारी में हेरफेर, आभासी संपत्तियों और क्रिप्टो करेंसी का दुरुपयोग और अंतर्राष्ट्रीय नियमों को दरकिनार करने के लिए समुद्री क्षेत्रों और शिपिंग उद्यमों का लाभ उठाना शामिल है। इस बीच भारत द्वारा प्रस्तुत एक मामले के अध्ययन में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में पाकिस्तान के सरकारी स्वामित्व वाले राष्ट्र विकास परिसर से उत्पन्न होने वाली प्रसार संबंधी चिंताओं को उजागर किया गया है। आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने विद्यार्थियों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों से तेल बोर्ड स्थापित करने को कहा है।
CBSE ने स्कूलों में स्वस्थ भोजन और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने को कहा है। बोर्ड ने विद्यार्थियों को सीढ़ियों का उपयोग करने, छोटे व्यायाम अवकाश आयोजित करने और पैदल चलने के मार्गों को सुगम बनाने के लिए भी कहा है। वैश्विक रोग भार 2021 मोटापा पूर्वानुमान अध्ययन के अनुसार भारत में मोटापे से पीड़ित वयस्कों की संख्या 2050 तक लगभग 45 करोड़ होने का अनुमान है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक के परपोते डॉक्टर दीपक तिलक का आज पुणे में उनके आवास पर निधन हो गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्ण, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने भी डॉक्टर तिलक के निधन पर संवेदना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में देश के पूर्वी हिस्सों और मध्य भारत के आसपास बहुत तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अगले 6 से 7 दिन के दौरान केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से शुरू होगा। जापान ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी दूसरे दौर में पहुंच गई है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने भी दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। वहीं 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु महिला सिंगल्स के पहले ही दौर में हार गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।